نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير قال ألم أقل لك 16th پارہ ہے لیکن ہم سورة الکہف کی آیت نمبر 60 سے شروع کریں گے جو 15ویں پارے کے اندر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں خواہ مجھے سال ہا سال تک چلنا پڑے یہاں سے آگے تک جو باتیں ہیں اس کو پیش کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں کروں گی اور وہ کیا کہ انسانوں کے ساتھ دنیا میں اکثر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی حقیقت اس کو سمجھ نہیں آتی بعض دفعہ ہم اپنی تقدیر کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ایسا ہمیشہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے تو پہلی ایک وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ کاموں کی حکمت سکھانا چاہتے ہیں دوسری ایک اور چیز وہ کیا ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز ہمیں بہت ہی بری لگ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے کوئی خیر نکالنا چاہتا ہے تیسری چیز ایک یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگ دنیا میں رہتے ہوئے کچھ ایسے کام کرنے لگتے ہیں کہ جو صرف اسی دنیا کے لیے ہوتی ہیں کچھ ایسے علوم کا سیکھنا کہ جو انسان کی دنیا کو مزید اچھے سے اچھا بنا دے لیکن ان کو روحانی علم کی وہ طلب نہیں ہوتی یہ تین بڑی وجوہات ہیں جس کو ہم یہاں سے لے کے آگے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے کہانی کچھ اس طرح سے آتی ہے صحیح بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پہ کسی نے پوچھا کیا بتائیے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم کون ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچتے ہوئے کہ میرے پاس کتابیں وہی ہے ظاہر ان کے اوپر تورات اتری تھی بغیر کسی تکبر یا بڑائی کے خیال کے ریئلسٹک اپروچ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہوں کیونکہ میں نبی بھی ہوں اور میرے پاس اللہ کی کتاب ہے اور آپ کو آج بھی پتہ ہے کہ قرآن کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ الہامی کتابوں میں وہ تورات کا ہے بس یہ بات ان کی کہ وہ میں ہوں اللہ کو پسند نہیں آئی اللہ اکبر اللہ آج کے دین والوں کو بھی یہ بات سمجھا دے کہ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ جو بات ہمیں پتہ ہے یا جو بات ہمارے عالم کو پتہ ہے اب وہ دوسرے کو کہاں بتاؤ گی اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ یہ تو نہیں ہے آپ سے بھی زیادہ علم والا کوئی ہے اب ایک ریئیکشن کیا تھا موسیٰ غصے میں آ جاتے ہوں میرے سے بڑا ہے لو اس کو جرت کیسے ہوئی ذرا بتائیں کدھر ہے میں اس کو پوچھ کے آؤں موسیٰ نے کہا اچھا میرے سے بڑا ہے آپ مجھے بتائیے وہ کہاں ہے اب میں اس سے سیکھوں گا یہ ہیں ٹرو سیکرز آف نالج اللہ کا نبی صاحب وحی پھر آپ دیکھیں شریعت ملی ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے سال تک فرعون کے ساتھ تبلیغ کے لیے چنا بنی اسرائیل ان کے ذریعے سے آزاد ہوئی پھر ان کو تورات ملی 40 سال تک وادی تی میں رہنے کے سارے مرحلے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کیا چاہتا ہے کہ اس کے دل میں بڑائی نہ ہو اور ایسا ہی شخص دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے جس کا سیکر مائنڈ ہو اور چاہنا مجھے اور چاہیے مجھے اور علم چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ایک دنیا چاہنے والا اور ایک علم چاہنے والا اور یہ دونوں سچ ہے دنیا جس کے پاس ہے کبھی اس کو یہ نہیں لگے گا پوری ہے آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی بھری ہوئی ایک وادی ہو یعنی ویلی آف دا گولڈ ہو تو پھر بھی وہ ایک اور کی چاہت رکھے گا اور یہ مٹی سے بننا ہے اس کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی اور وہ قبر کی مٹی ہے اور علم والوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کی طلب کتنی ہے صرف حضرت موسیٰ اور خضر کے اس قصے کے اوپر اتنی موٹی موٹی تفسیریں ہیں پوری ایک کتاب ہے کہ آداب المعلم و متعلم یعنی ایٹیکیٹس آف دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر صرف اس ایک واقعے کی بیس پہ ہنڈرڈ اینڈ ہنڈرڈ مورلز بنتے ہیں انشاءاللہ کسی موقع پہ جب ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو آپ کو وہ بھی لکھاؤں گی لیکن اب یہاں سے ہم ایک ہلکا سا اثر لیتے ہوئے چلیں گے کہ کیا باتیں ہم اس واقعے سے سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اس آیت کو پڑھوں گی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ مجمع البحرین او امضی حقبا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے فلما بلغا مجمع بینہما پھر جب وہ دونوں دریا کے سنگم یعنی ملنے کی جگہ پر پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا لاؤ ہمارا کھانا ہم کو دو ہمیں اپنے سفر سے سخت تکلیف پہنچی ہے یہ ہے آیت نمبر 60 سے 62 اس کا عنوان کیا ہے علم کے لیے کمٹمنٹ यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का ये लफ्ज़ ला अब्रहु, इसको हाईलाइट कर सकते हैं आप लोग आयत नंबर 60 में। हरगिज़ मैं नहीं टलूंगा, यानी आई विल नेवर लूज माई हार्ट, या मैं अपने आप को एकदम पीछे नहीं करूंगा। इल्म हासिल करने के लिए इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। आप देखिए कि जब तक हम खुद फुली कन्विंस्ड नहीं होते ना इल्म हासिल करने के लिए, और उसके लिए हमारे अंदर जब तक कमिटमेंट नहीं होती, उस वक़्त तक हम वो काम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को एक निशानी दी थी कि जहाँ ये मछली आपके ख्वान में से निकल के पानी में गिरेगी, उस जगह पे आपको खिजर नाम का एक शख्स मिलेगा, वहाँ आप उनसे इल्म हासिल कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर एक और भी अमल की बात है कि अपने शागिर्द को साथ लिया था। रिवायतों में आता है कि यूशे बिन नून इनके स्टूडेंट थे। मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के सफर पे अकेले नहीं निकले बल्कि अपने शागिर्द को लिया। ये भी उलमा ने इस पे भी बहुत लंबी बात की है कि एक अच्छा उस्ताद कौन होता है जो अपने इल्मी सफर में अपने स्टूडेंट्स को साथ रखता है, क्योंकि जब कोई बंदा अपने उस्ताद के साथ रहता उठता तो वो चीजें सीख लेता है जो उसको क्लासरूम में बैठ के नहीं मिलती। क्योंकि जब इंसान सफर में होता है तो बहुत सारी चीजें इंसान के साथ फितरी तकाजों की होती हैं, और उस वक्त इंसान अपने एक असल रूप में होता है। अब हुआ क्या कि मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और इनको याद नहीं रहा, या आंख लग गई, या क्या हुआ, उस वक्त वो मुकाम था कि जहां पे खिजर अलैहिस्सलाम ने उनको मिलना था, लेकिन यूशे बिन नून जो थे वो भूल गए, मछली गिर गई, आगे चलते गए। जो ही ऑफ द ट्रैक गए तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकन हुई, भूख लगी, कहा खाना दो भाई, कहा वो मछली तो वो बहुत पीछे रह गई थी। अरे कहा ये तो वही जगह थी जहां हमें मिलना था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर बुरा नहीं माना बल्कि वापस आए, अगली आयतों को देखें। बल्कि ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे ही वाक्य को एक ही टॉपिक देना चाह रही हैं, तो फिर इसमें से हम मोरल्स लेंगे, जैसे कहानी को पढ़ने का एक स्टाइल होता है। ठीक है, काल अरई तई जवीना इलसखरति फइन्नी नसीतुल हूत। इसने जवाब दिया कि आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे, वहीं मैं मछली भूल गया था। दरअसल शैतान ने ही मुझे भुला दिया था कि मैं आपसे इसका जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तरीके पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापिस लौटे, बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास से खास रहमत अता की थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। इससे मूसा ने कहा मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया। इसने कहा आप मेरे साथ हरगिज सबर नहीं कर सकते, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो इस पर सबर कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया इंशाल्लाह आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी ना करूंगा। इसने कहा अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रहे कि किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ ना पूछना जब तक कि मैं खुद इसकी निस्बत कोई तस्करा न कर दूं। फंतलका, फिर वो दोनों चले यहाँ तक एक कश्ती में सवार हुए तो इसने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा ने कहा क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डबो दें? ये तो आपने बड़ी खतरनाक बात की। इसने जवाब दिया मैंने तो पहले ही तुझसे कह दिया था कि तू मेरे साथ हरगिज सबर न कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़िए और मुझे अपने काम में तंगी में ना डालिए। फिर दोनों चले यहाँ तक के एक लड़के को आया, उसने उसे मार डाला। मूसा ने कहा क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के इवज के मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। खाला अलम अकुल्लक इन्नक लन तस्तती यमाई सब्रा। वो कहने लगे क्या मैंने तुमसे कहा न था कि तुम मेरे हमरा हरगिज सबर नहीं कर सकते? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया अगर अब इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज के बारे में सवाल करूं तो बेशक आप मुझे अपने साथ न रखना, यकीनन आप मेरी तरफ से उजर को पहुंच चुके हैं। फंतलका, फिर दोनों चले एक गांव वालों के पास आकर इनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमानदारी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहां एक दीवार पाई जो गिरा ही चाहती थी, इसने उसे ठीक और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। काला हाजा फिराक बैनी व बैनिक सअनब्बियुका बितावीली मा लम तस्तती अलैहि सब्रा। इसने कहा बस ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान, अब मैं तुझे इन बातों की असलियत भी बता दूंगा जिस पर तुझसे सबर ना हुआ। अब शुरू से लेके यहाँ तक को एक टॉपिक करेंगे। ये थी आयत नंबर 60 से 78, 60 से 78। इसको अनवान लिखेंगे इल्म सबर के बगैर नहीं मिलता। दूसरा भी टॉपिक लिख सकते हैं इल्म और सबर लाजिमो मलजूम। बहुत ही खूबसूरत मॉरल्स हैं इस हिस्से में हमारे लिए। पहली बात तो यह है कि इल्म के लिए कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। दूसरी बात कि इल्म के सफ़र में शागिर्दों में से किसी अच्छे शागिर्द को साथ लिया जा सकता है। अगली बात उससे कह के अगर शागिर्द से कोई गलती हो जाए तो तो उसको माफ किया जा सकता है। भूल गए थे यूशा बिन नून बताना, उनकी गलती की वजह से थोड़ा सा आगे चले गए, फिर वापस पलटे। फिर इससे भी पता चलता है कि कितने कमिटेड थे कि आगे जाके वापस आए। हमारा हाल क्या होता है कि हम कभी घर से इरादा कर ही लेना कि चले आज दर्स में चलते हैं, और जरा वो जगह ना मिले तो हम कहते हैं हमें नहीं आती जगह, चलो वापस चलते हैं, चलो बाजार के करीब पहुंच गए वहां चले जाते हैं। देखिए एक इंसान की दीन के इल्म के साथ कमिटमेंट देखने के लिए अल्लाह ताला बाज दफा उसको रास्ता भुला देता है, बाज दफा उसको वो पता ही नहीं चलता वो किधर है। ये असल में इम्तिहान होता है, अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि इसकी तलब कितनी है, इसकी तड़प कितनी है। और जब हम वहां से पलट के आते हैं ना करीब से भी, तो असल में हम उस इम्तिहान में नाकाम हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला बंदे को उसकी तलब के बगैर नहीं देता। एक जुमला लिख लें जो मैंने बहुत इब्तदा में अपने कुरान पाक पे लिखा था, मेरी पहली उस्ताद थी, उन्होंने एक बात दी थी, कहने लगी कि अल्लाह बंदे को हर नेमत बिन मांगे दे देता है, लेकिन हिदायत बिन मांगे नहीं देता। ये कोई सस्ता सौदा नहीं है, ये बड़ी कीमती चीज़ है। इसके लिए अल्लाह ताला बंदे को फिर खंगालता है, फिर देखता है इसको तलब है नहीं। आर यू सीरियस, आर यू सीरियस, रियली यू वॉन्ट इट, रियली? फिर सोच लो, जब खंगालता है ना डाल के मुश्किलात में, कितने मौके ऐसे आते हैं कि सफर में आने वाले चल पड़ते हैं वापस। जब सफर शुरू होता है बहुत लोग होते हैं आहिस्ता आहिस्ता झड़ने लगते हैं। आप देखिए कि जब दरख्तों पे बूर लगता है तो बहुत सारा बूर होता है जो आमों के सीजन में लगता है, फिर उसके बाद फौरन आंधियां चलती हैं, उन आंधियों में सब फालतू बूर उतर जाता है जो उस आंधियों के अंदर दरख्त के ऊपर लगा रहता है, वही बाद में आम बनते हैं। फिर कच्चे आम जब होते हैं फिर भी आंधियां चलती हैं, फिर कच्चे आम भी झड़ जाते हैं, आखिर तक जो आम दरख्त के साथ लगा रहता है ना वही मीठा होता है। यही इल्म का सफर है। जब हम देखी की कोई नियत करते हैं, हम कहते हैं नहीं देखना बस, अब तो मैंने ये काम करके रहना है। आप ये करके देखें, आपके घर में आज ही कोई मसला शुरू हो जाएगा, कल इस वक्त आने से पहले ही आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा कि आप कहेंगे नहीं गाड़ी नहीं मिल रही, चाबी नहीं मिल रही, अच्छा बच्चे को अब स्कूल ले जाना है, वो अपॉइंटमेंट याद आ गई, वो आज डॉक्टर के पास जाना है, वो प्लम्बर आने वाला है, वो दिस एंड दैट। जब कोई ऐसा मामला आए ना फौरन मुस्कुराए, ओ वाकई ये मुझे रोकने की कोशिश है, अल्लाह मैंने जाना लाभ रहू। जब मैं इनको डिटेल से पढ़ाती हूँ तो कुछ कोड वर्ड्स भी इनको कराती हूँ, उसमें एक लाभ रहू लिख ले अपनी जिंदगी में, लाभ रहू मैं नहीं टलूंगी, मैंने कर लिया तो करना है। और आपको पता है कि खवातीन जब किसी काम को करना चाहती हैं तो कोई रोक सकता है? और शोहर बेचारे की तो जरूरत ही नहीं है, वो तो बेगम को कभी नाराज ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हमें देखता है। कभी आपको अल्लाह के रास्ते की कोई कमिटमेंट करने के बाद प्रॉब्लम आए तो फौरन मुस्कुराए, यही सिखा रहा है अल्लाह ताला इसमें, कि बाहर कुछ हर्डल्स आ रही होती हैं लेकिन ये हमारा टेस्ट होता है। आप लोगों ने कभी एक टेस्ट किया, बाज दफा हार्ट पेशेंट का वो टेस्ट करते हैं, स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं गालिबन उसको, कि वो बंदे को फौरन पुश करते हैं और वो देखना चाहते हैं कि इसका हार्ट कितना स्ट्रांग है, कितना उसको लेता है। बिल्कुल अल्लाह अपने रास्ते में आने वालों का भी ये स्ट्रेस टेस्ट करता है, उनको प्रेशराइज करता है, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है। देखिए जिसको जितने काम का बनाना होता है अल्लाह उसको उतना ही करवाता है। आगे सूरत आहा में आप खुद ही पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस तरह अपने काम के लिए चुना। यहाँ बात थोड़ी सी इल्म तक ही रखते हैं। फिर अगली चीज इसमें से जो हमने सीखी कि शैतान भुला देता है, आपको भी भुला देता है। आप कितने दिन से इंतजार कर रहे होते हैं, अच्छा फलां दिन कहीं दरस है मैंने जाना है, और आखिर में अरे मुझे तो भूल ही गया, वो समय वो सेल का इश्तेहार जो देख लिया था, तो वो भूलना तो था ही कि आज दर्स भी, आप सेल में चले गए चीजें खरीदने तो वो भूल गए। तो भूल शैतान की तरफ से, नमाज भुला देता है, नमाज में भूल करवा देता है। फिर अगली चीज इससे हमें पता चली कि अगर इंसान कभी इल्म के सफर में निकले और थोड़ा सा रास्ता भटक जाए तो वापिस पलट आए, अल्लाह ताला उसके अजर को बढ़ा देता है। मैं कभी भी कहीं दरसों में जब जाऊं बाय रोड, तो कभी होते नई जगह में कि बंदा थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमता है, तो मैं इंजॉय कर रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि ये मेरे कदम लग रहे हैं, हमारी गाड़ी के टायर जो लग रहे हैं, इंशाल्लाह माँ हूं। ये निशानियां सब तो हो रही हैं, सीधा जाती तो थोड़ी निशानियां थी, अल्लाह ताला ज्यादा तक ले जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इस सूरत के जरिए ये सिखा रहा है कि अपनी जिंदगी में आने वाले हर्डल्स परेशानियों को हमेशा अच्छा इंटरप्रेट करो, नहीं इसमें खैर है, इसके पीछे कोई खैर है जो आगे इंशाल्लाह हम इसमें देखने वाले हैं। फिर अगली चीज जो इसमें हमें पता चली, उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक, हिजर कौन थे, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं जो इस वक्त जरूरत नहीं। सिर्फ एक चीज छोटी सी आपको एक जनरल रूल या एक कुलिये के तौर पर बता दूं कि अल्लाह ताला दुनिया में अंबिया कराम के जरिए से शरीयत को नाफिज करवाता है, इसी तरह फरिश्तों से अल्लाह ताला कुछ ऐसे काम करवाता है जो हमें दिखते नहीं। बस आप देखिए कि किसी की जान लेनी, मलकुल मौत के जिम्मे ये काम लगा हुआ है, दिन रात ये काम हो रहा है, ये गैब के पर्दे में हो रहा है। अल्लाह ताला अंबिया कराम के इल्म को इल्म यकीनी करना चाहता है। सूरत बनी इसराइल में हमने पढ़ा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई मेराज के जरिए से कुछ ऐसे मुशाहदे करवाए गए जो आम आंखों से लोगों को नहीं करवाए जाते, ताकि जब आप दूसरे को बात करें तो पूरे यकीन से करें। क्योंकि देखिए जिसने लोगों को अल्लाह की बात बतानी होती है ना, उसका अपना ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अगर वो खुद ऑब्जर्व नहीं करता तो दूसरों को नहीं देगा। तो जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकया मेराज में अल्लाह ताला ने कुछ अनयूजुअल वाकया दिखाए थे जन्नत के जहन्नुम के, इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खिजर के जरिए से पर्दा गैब के पीछे होने वाले कुछ वाकया जो थे वो गैब के पर्दे के बाहर दिखा दिए। अगर ये जुमला समझ गए ना, तो ये सारी बातों पे आपको भी कोई इतराज नहीं होगा कि बच्चे को क्यों कत्ल किया जो अभी हम पढ़ रहे थे, क्योंकि बास चीजें गैब के पीछे से हो रही होती हैं, अल्लाह ताला नबियों को दिखाना चाहते हैं। तो खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में ज्यादा यही तस्वुर में आता है कि वो फरिश्ते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक इंसानी रूप में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखा, और अगर वो इंसान भी थे तो कोई अनयूजल खूबियां थी। अल्लाह ताला कुछ लोगों को कुछ ऐसी चीजें देता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो आपसे सीखूंगा। ये भी मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने उनसे सीखने की ख्वाहिश की। वरना बस दफा आप देखिए कि इंसान जब जरा किसी आला मनसब पे आने लगता है तो सबसे पहले तो ये सोचता है कि अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप देखिए कि जो डॉक्टर बनते हैं वो हर साल रिफ्रेशिंग कोर्स करते हैं, उनको फ्यू आवर्स देने पड़ते हैं हर साल, उनके कुछ ना कुछ नए कोर्सेज अपडेट्स दवाइयों के देने पड़ते हैं। इसी तरह जो शख्स लोगों की दीनी रहनुमाई पे माइल हो, उसका ये फर्ज बनता है कि वो हर वक्त के साथ आते होते लेटेस्ट टेक्निक्स और नए तरीके से नए माहौल और हालात में नई नई चीजों को सीखता रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा, उन्होंने कहा कि तुम नहीं चलोगे, क्यों? कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, और नबी कभी भी बुराई करता देख के चुप नहीं रहता। हमें भी नहीं रहना चाहिए, हम सबको भी यही हुक्म है। अब हिजर अलैहिस्सलाम को ये बात समझ आ रही थी कि जो काम मेरे जरिए से होने वाले हैं, मूसा इसको इल्मे वही के नाते से देखेंगे, क्योंकि किसी को कत्ल करना शरण जायज नहीं, तौरात में भी जायज नहीं था। अब जब मैं बच्चे को मार लूंगा तो ये मूसा अलैहिस्सलाम तो एतराज करेंगे। तो ये कंट्राडिक्शन दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं रख रहा, और इससे एक बहुत बड़ा उसूल लिया उलमा ने, और वो क्या कि जब कोई तुमसे कहे कि मुझे इल्म सिखाओ तो पहले उसको ठोक बजा लो, नहीं आई एम नॉट अवेलेबल, मैं फारिग नहीं अभी नहीं, ताकि उसकी तड़प पता चले, उसकी तलब पता चले। ये इल्म की शान है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा उम्मत मुस्लिमा ने इल्म के सफर किए, आज नॉन मुस्लिम हैरान है, इनके पूरे पूरे सफरनामे लिखे में जो इल्मी सफरनामे थे। और पिछले दौर में लोग किसी ऐसे शख्स से रिवायत कबूल ही नहीं करते थे जिसने सिर्फ अपने शहर में बैठ के सीखा हो, वो कहते थे इस शख्स ने इल्म के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, इसने मुशाहिदा नहीं किया, लिहाजा ये नहीं कर सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, और आप फिक्र ना करें, मैं आपसे पूछूंगा नहीं। खिजर अलैहिस्सलाम ने शर्त रख दी कि देखो, जब तक मैं खुद कुछ ना बताऊं तुम नहीं बोलोगे। और ये आज भी असूल है, कल मूसा के लिए था, आज भी है। सवाल करना, बाज लोग सिर्फ सवालों के जरिए से दीन लेना चाहते हैं, तो याद रखिए दीन कभी सवाल से नहीं आता, इल्म हासिल करने के बाद उस बारे में सवाल करना फायदा देता है, और इल्म हासिल करने से पहले सवाल का कर देना मजीद इस तरह आपको बढ़ाता है। हमारा आज मैार क्या बन चुका है, बींग ए नेशन, सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर, फुला। हमें फतवे देने के लिए भी लोग मौजूद हैं, हमें इल्म सिखाने के लिए भी ऑनलाइन पे और हर तरह से चीजें मौजूद हैं। सहाबे कराम ने पूरी जिंदगी में नबी सल्लम से सिर्फ 10-11 सवाल किए, और वो आज भी कुरान पाक में मौजूद है, यसअलूनका अनिल हिल्ला यसअलूनका अनिल महीस। तो लिहाजा सवाल पूछने से ज्यादा मानने वाला जहन जो है बनाने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज इस हिस्से से हमने क्या सीखी कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती में बैठे तो मूसा अलैहिस्सलाम भी साथ थे, तो एक चिड़िया थी उसने चूंच में कुछ पानी भरा, तो खिजर अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इल्म जो मुझे और तुम्हें दिया है उसकी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में यही मिसाल है, जैसे इस चूंच में आने वाले पानी की मिसाल इस समंदर जैसी है। कुरान पाक में ना कि वसी कुर्सी खुद समावात वल अर्द, अल्लाह ताला का इल्म इतना ज्यादा, अल्लाह अल अलीम है, कि हमें ये जो इल्म के छोटे छोटे मोती कतरे दिए ना, ये अल्लाह के उस इल्म के आगे कुछ भी नहीं है। तो लिहाजा जो अल्लाह की जात चीजों की हिकमत जान सकती है वो दूसरे नहीं जान सकते। फिर इसके बाद आगे अब क्या हुआ कि 3 दफा मूसा अलैहिस्सलाम चुप ना रह सके, क्योंकि वो एक बच्चे को कत्ल होता देख रहे हैं, अपने सामने किसी की नई कश्ती को तोड़ता हुआ देख रहे हैं, लोगों ने उनको खाना नहीं दिया, ये अब उनकी दीवार बनाने लग गए। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम को फिर उसकी हिकमत बता रहे हैं, कहते हैं अम्मस सफीना तो वकानत लि मसाकीन, कश्ती तो चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे, मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ करने का इरादा कर लिया, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था जो हर एक सही सालम कश्ती को जबरन जब्त लेता था। ये थी आयत नंबर 79, इसका अनवान है वक्ती तकलीफ आने वाली मुश्किलात से बचा लेती है। बस दफा हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे ही गम आते हैं कि बज़ाहर हमें लगता है कि हम डूब गए, हमारी जिंदगी खराब हो गई, माल चला गया, बज़ाहर यहाँ वो कश्ती टूट फूट रही थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको कैसे बचा लिया। दरिया के दूसरे किनारे पे जो बादशाह था वो हर नई कश्ती को गसब कर लेता था और पुरानी पुरानी कश्तियां जो होती थी उसको छोड़ता था। बज़ाहर छोटा नुकसान जिंदगी में कबूल कर लिया जाए तो बस दफा इंसान बहुत बड़े नुकसान से बच जाता है। और दूसरी क्या थी, वह अमल गुलाम फकान अबाहन, और इस लड़के के माँ बाप ईमान वाले थे, हमें खौफ हुआ कि कहीं ये इन्हें अपनी सरकशी और कुफर से आजिज और परेशान न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले में इससे बेहतर पाकीज़ा औलाद दे और इससे ज्यादा मोहब्बत करने वाला बच्चा अनायत फरमाए। ये थी आयत नंबर 80 से 81, इसका उनवान क्या है, अल्लाह बंदे की। कहाँ कहाँ से मदद करता है। बस दफा बचपन में किसी इंसान का बच्चा मर जाता है या माँ का मिसकैरेज हो जाता है। माँ के लिए ये सदमा बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसमें खैर हो सकती है। क्या आज उस बच्चे का मरना माँ के लिए एक हल्की चोट का सबब है, कल वही बच्चा बड़ा होके माँ बाप की बेइज्जती करने वाला बन सकता था। वो नाफरमान हो सकता है, वो नाशुकरा बन सकता है, वो चोरी कर सकता है, वो शहर में कोई कैसा गलत काम करते जिससे उस माँ और बाप का घर से निकलना मुहाल हो जाए। फिर वो माँ बाप अपने मुंह से कहें कि अल्लाह करता तुम बचपन में ही मर जाते तो अल्लाह तला बचा लेता है। कभी भी जिंदगी में जो मुश्किल या गम आते हैं ना, उसको सुन के परेशान ना हुआ करें। अल्लाह ने हर चीज के अंदर खैर रखी है, यही अल्लाह की शान है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि आसान तक रहू शयन बहुआ खैरुल्लकुम, शायद तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे हक में बेहतर हो। और एक ईमान वाले का यही इम्तिहान है कि किस्मत पे राजी रहे। अल्लाह जो तूने मेरे साथ किया ये बेहतरीन था, ये सब तेरी ही देन थी और मैं इस पे राजी हूँ। यकीन करें जब इंसान अपने आप को इस लेवल पे ले आए ना कि गम भी उसको खुशियों की तरह लगे, तो फिर अल्लाह तआला उसको अपने लिए चुन लेता है। हम सारा वक्त किस्मत के शिकवे करते रहते हैं, सर फोड़ते रहते हैं, हुआ क्यों, मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरा ही ऐसा मामला क्या था। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब कोई मुसीबत आए तो शुक्र करो, उससे बड़ी तो नहीं आई ना। फिर अगला वाक्या क्या था, वह मलजिदा रुफकान अली गुलामैन। दीवार का किस्सा ये है कि इस शहर में दो यतीम बच्चे हैं जिनका खजाना उनकी दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक था, तो तेरे रब की चाहत ये थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये खजाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। मैंने अपनी राय से कोई काम नहीं किया, ये थी असल हकीकत इन वाकियात की जिन पर आपसे सब्र न हो सका। ये है आयत नंबर 82, इसका उनवान है माँ बाप की नेकी नस्लों तक बाकी रहती है। बहुत ही नेक शख्स था, दौलत वाला था। जब मौत के असरात करीब हुए तो इसने अपने खजाने को एक दीवार के नीचे दफन कर दिया। उस दौर में यही तरीकाकार था, ख्याल ये था कि बच्चे बड़े होंगे उसके साथ साथ ये दीवार भी जो है अपनी तबई जिंदगी पूरी करेगी। दीवार को तोड़ेंगे जब तो नीचे से खजाना निकल आएगा। हुआ क्या कि कुछ हादसा की वजह से वो दीवार वक्त से पहले गिरने के काबिल थी। अब करीब था कि वो बच्चों का खजाना जो था कोई दूसरा ले जाता। अल्लाह यतीमों की कैसे मदद करता है कि जब उसके माँ बाप दुनिया में ना रहे, और जो माँ बाप अल्लाह की रजा के साथ जी के जाते हैं ना, बाद में उनकी औलादों का अल्लाह हाफिज होता है। आपने कभी देखा होगा कि बच्चे भी छोटे होते हैं और माँ बाप का इंतकाल हो जाता है। लोग कहते हैं हाय इसका बाप चला गया, हाय इन बच्चों के रिश्ते कहाँ होंगे, हाय ये बच्चे कैसे जॉब लेंगे, पढ़ेंगे कैसे। लेकिन फिर चंद साल के बाद आप देखते हैं कि कहानी बिल्कुल पलट गई। वो जो माँ बाप मौजूद है उनकी बच्चियां भी बैठी हुई हैं घरों में, और वो यतीम बच्ची थी उसका रिश्ता भी हो गया, शादी भी हो गई, वो बच्चे पढ़ लिख भी गए। क्या बात पता चलती है कि राजिक माँ बाप नहीं है। जब इंसान के अंदर तकवा होता है ना, अल्लाह ताला बाद में औलादों का फायदा करता है। बस दफा सारी जिंदगी माँ बाप अल्लाह को नाराज कर करके जमा करते हैं चीजें, ये सोच के कि हमारे बाद हमारे बच्चों के काम आएगा। नतीजा क्या होता है कि जब हमारी जिंदगी में नाफरमानी होती है तो हमारे बच्चों के अंदर भी एक ऐश परस्ती की बात आती है। हम लाखों भी छोड़ के जाएंगे ना, चंद साल के बाद खत्म। माले मुफ्त दिले बेरहम वाली कैफियत, और विरसे में मिली हुई चीज की तो कदर वैसे ही कम होती है। नतीजा क्या निकला कि आपके चंद साल के बाद फिर वो बच्चे बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। इसके बरक्स जो माँ बाप अपनी जिंदगी में नेकियों पे रहते हैं, अल्लाह से अच्छा ताल्लुक रखते हैं, बच्चों की नेक तरबियत की कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह ताला बाद में उनके बच्चों का सहारा बनता है। और इसकी तो सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह का नबी है। आज लोग अगर यतीमी को बुरा समझते हैं तो उनको अल्लाह के नबी से मिसाल लेनी चाहिए कि अगर दुनिया के अंदर माँ बाप ही बंदे को किसी मुकाम पे पहुंचाते तो अल्लाह के नबी को ये मुकाम तो ना मिलता। कि अल्लाह ने उनको यतीम पाया और जगह दी, ठिकाना दिया, सूरह दोहा में आप पढ़ेंगे। तो कभी भी किसी जाहरी सहारे में अटक के ना रहे। बस खवातीन होती है उनकी जिंदगी में ये हाल होता है, हर वक्त शोहर और बस घर और इन चीजों के पीछे। शोहर ना रहेगा तो क्या होगा, वसवसे आने लगते हैं। कभी कोई बीमार हो जाए तो कहते हैं मैं इसके बाद कहाँ से खाऊंगी, कहाँ से पीऊंगी। देखिये दुनिया में जो लोगों के हाथ है ना, इनके पीछे के रिमोट कंट्रोल्स अल्लाह के हाथ में। अगर आज भी कोई शोहर बीवी को दे रहा है ना, तो अल्लाह के हुक्म से दे रहा है। अगर माँ बाप खिला पिला रहे हैं तो ये अल्लाह की तरफ से है। असल तवक्कुल क्या है कि ये जाहरी सहारे छोड़ के इसके पीछे के तार दिखने लगे, और जिसका अल्लाह से ताल्लुक होगा फिर उसको कभी इस चीज की परवाह नहीं रहेगी कि कोई इंसान अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहता तो मैं कहाँ से खाऊंगी। ठीक है, असबाब के जरिए अल्लाह ताला देता है, लेकिन इंसान का काम यह है कि वो राजी रहे। और आप देखिए कि ये सारी चीजें करने के बाद जब इंसान बचा ले तो अपने ईमान को बचा ले। ईमान बड़ी कीमती चीज है। बाज़ दफा आपका सब कुछ जा सकता है, लेकिन अगर आपने उन चीजों के जाने से अपने रब को पा लिया, ईमान को पा लिया, तो आप तो बिल्कुल वैसे हैं कि जैसे आपको राख के अंदर से प्योर गोल्ड मिल गया। कभी आप सोने का कोई जेवर देखें जब बनता है तो उसको पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं, फिर उसका सारा खोट निकल जाता है। अल्लाह ताला जिंदगी में बाज दफा कुछ ऐसे मसाइल और प्रॉब्लम जिंदगी में लाते हैं कि जिससे आपके ईमान का मैल गंदा निकल जाता है, खोट निकलता है और आप बिल्कुल प्योर होकर अपने रब को पा लेते हैं। यही वो चीज है कि अल्लाह ताला फिर शर में से खैर निकालता है। जो जितना अल्लाह के ऊपर अपने आप को डाल देगा वो फिर जिंदगी में खुशियों में आए या आजमाइशों में, दोनों हाल में अल्लाह ताला उसके लिए खैर ही खैर पैदा करते हैं। पीछे हमने सहाबे कहफ के किस्से में यही पढ़ा कि वो क्या बचा के निकले, ईमान बचा के निकले, क्या नहीं था उनके घरों में, इतने ट्रेंड सेटर्स थे, इतने बड़े लोगों के बच्चे थे, ईमान बचाया। क्योंकि आप देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कभी किसी वक्त कोई मुश्किल आती है, कोई आफत आती है, आपको घर बेचना है या कुछ करना है, आप सबसे पहले क्या चीजें देते हैं जो बेकार होती हैं, जो सस्ती चीजें हैं जिनके बगैर आपका गुजारा हो रहा है, ये भी दे दो ये भी दे दो। जो कीमती चीज होती है ना उसको आप आखिरी वक्त तक हाथ में रखते हैं, ये ना जाए, ये ना बेचूं, ये फुलां की निशानी है, ये फुलां की निशानी है। इसी तरह जिसको ईमान प्यारा होता है ना वो अपना ईमान नहीं जाने देता, और जिसके लिए ईमान हल्की चीज होगी ना वो हर मौके में सबसे पहले ईमान को बेचेगा। अब क्या करें, फिर अब कौन देख रहे हैं, अच्छा अल्लाह को तो पता है, अच्छा अब ये तो करें। तो जो ईमान बचा लेता है ना अल्लाह ताला फिर उसको बाद में सब कुछ दे देता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दो वाक्या तो हुए। अब तीसरा वाक्या भी इसी सूरत का जो है उसके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, पूरे को पढ़ के ही इंशाल्लाह आपके साथ बात करूंगी। वयसअलूनका अन ذوالقرنین, आपसे ذوالقرنین का वाक्या ये लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। आप कह दीजिए कि मैं इसका थोड़ा सा हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। हमने इसे जमीन में कुव्वत अता फरमाई थी और इसे हर चीज के सामान भी अनायत कर दिए थे। वो एक राह के पीछे लगा यहाँ तक कि सूरज डूबने की जगह पहुंच गया और उसे एक दलदल के चश्मे में गरूब होता पाया और इस चश्मे के पास एक कौम को भी पाया। हमने फरमाया कि ذوالقرنین या तो तू इन्हें तकलीफ पहुंचाए या इनके बारे में तू कोई बेहतर रविश इख्तियार करे। इसने कहा जो जुल्म करेगा इसे तो हम अब खूब सजा देंगे, फिर अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा और इसे सख्त अजाब दिया जाएगा। हाँ जो ईमान लाए और नेक अमल करे इसके लिए तो बदले में भलाई है और हम इसे अपने काम में भी आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो एक और राह के पीछे लगा यहाँ तक के जब सूरज निकलने की जगह तक पहुँचा तो इसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि उनके लिए हमने इससे कोई और ओट न बनाई। और वाकई ऐसा ही है, हमने इसके पास की कुल खबरों का अहाता कर रखा है। फिर वो एक सफर के सामान में लगा यहाँ तक कि जब वो दो दीवारों के दरमियान में पहुंचा, इन दोनों के परे इसने एक ऐसी कौम पाई जो बात समझने के करीब भी न थी। उन्होंने कहा है ذوالقرنین याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम करें इस शर्त पर कि हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें। इसने जवाब दिया कि मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत और ताकत से मेरी मदद करो, मैं तुम में और इनमें एक मजबूत दीवार बनाए देता हूँ। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब इन दोनों पहाड़ों के दरमियान दीवार बराबर कर दी तो हुक्म दिया गया आग तेज चलाओ, यहाँ तक कि लोहे की इन चादरों को बिल्कुल आग कर दिया। तो फरमाया मेरे पास लाओ, इस पर पिघला हुआ तांबा डाल दूं। बस तो इनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत थी और न इसमें कोई सुराख कर सकते थे। कहा ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है, हाँ जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा, बेशक मेरे रब का वादा सच्चा है। ये थी आयत नंबर 83 से 98, 83 से 98। इन आयत का उनवान लिखिए दुनिया की दौलत पाकर भी रब से दूर ना हुआ। ذوالقرنین कौन था इसके बारे में बहुत सारे अकवाल हैं, जिसमें से जो दुरुस्त बात ज्यादा लगती है कि ये ईरान का बादशाह खुसरो था, साइरस के नाम से इसको लोग जानते हैं। खुदा खौफ था, अल्लाह ने इसको दुनिया के बहुत मीन्स दिए थे। यहाँ जो फतबा सबा बना तो ये मीन्स को यूज करने की बात है, यानी उस दौर में भी अल्लाह ताला ने इसको वो रिसोर्सेज दिए थे कि जिसको इस्तेमाल करके इसने दुनिया का सफर किया, कोई एक शमाल की तरफ, एक मशरक की तरफ, एक दूसरी तरफ, और वहां जो भी अल्लाह ताला ने इसको खूबियां दी हुई थी, नेमतें जो भी इसके पास असबाब थे, उसको लोगों की फलाहो बहबूद के लिए इस्तेमाल किया। असल में यहाँ हम सब के लिए जो मैसेज है इस वाक्य में, और वो क्या है कि एक मुसलमान जिसको अल्लाह ईमान की दौलत दे, अगर वो किसी जगह का बादशाह भी बन जाए, इतनी दौलत उसके पास हो कि सारी दुनिया में घूमता फिरे, तो भी उसकी वो दौलत उसको नुकसान नहीं दे सकती। शर्त क्या है कि उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ा हो। हमारे यहाँ दौलत को एक जुर्म बना के पेश किया जाता है। बाज दफा लोग माल और दौलत को पाने की वजह से गिल्टी कॉन्शियस रहते हैं कि पता नहीं शायद अब हमारी आखिर آخرت خراب ہی ہوگی کیونکہ دولت آ گئی. تو یاد رکھیے کہ دولت اپنی اصل سے کچھ بھی نہیں ہے. اصل بات یہ کہ آپ اس دولت کو کہاں لگاتے ہیں. آپ اس کا اچھا استعمال کریں گے, لوگوں کو فائدہ دیں گے, اللہ تعالیٰ اس دولت کو مزید بڑھا دے گا. اور اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ دولت آپ کے لیے نقصان دیتی ہے. تو یہاں پوری صورت کے اندر یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ نہ اس کے اندر تکبر تھا, پھر بڑے سے بڑے کام کر کے بھی ہر چیز کا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دے رہا ہے. یہ بھی چیز بہت بڑی بات ہے. عموماً دیکھیے کہ اقتدار ملتے ہی انسان کی سوچ بدلنے لگتی ہے, لیکن اس نے کسی کام کو اپنی طرف نہیں رکھا. پھر ایک اور چیز اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ اس نے لوگوں سے اس کام پہ کوئی صلہ نہیں مانگا. دیکھیے کہ انسان چاہے کسی کو دین کا کوئی علم سکھائے یا دنیا کا کوئی فائدہ اس کو دے, جب اس کی نظر اللہ کے خزانوں پہ ہوتی ہے, وہ اللہ سے اجر لینا چاہتا ہے, تو وہ لوگوں سے اجر نہیں لیتا. پھر ایک اور چیز جو ہم نے بہت ہی خوبصورت سیکھی اور وہ کیا ہے کہ لوگوں نے جب اس کو آفر کیا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم کچھ پیسے جمع کریں اور اس سے لوہا خریدیں اور آپ ادھر ایک دیوار ڈال دیں, تو اس نے کہا کہ مجھے مال نہیں چاہیے کیونکہ مال اللہ نے مجھے بہت دیے, مجھے تمہاری ضرورت ہے, تم اپنی جان سے آؤ. بعض دفعہ دین اسلام کے ساتھ یہی حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو صرف ہمارے مال کی نہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے. اور یہ وقت جو ہوتا ہے, اگر اس وقت کوئی مال لگا کے اپنے آپ کو بچانا چاہے, تو پیچھے ہم پڑھ چکے غزوہ تبوک کے موقع پہ کہ پھر ان کا مال بھی قبول نہیں کیا گیا تھا. پھر ایک اور چیز ہم نے اس میں سیکھی یاجوج ماجوج کے بارے میں, اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا, لیکن یہ وہ فتنوں کا دروازہ ہے جس کو بند کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھے تو گھبرا کے اٹھ گئے. آپ نے کہا کہ آج ان یاجوج ماجوج نے اس دیوار کے اندر سوراخ کر لیا ہے انگلی کے برابر, اور اب فتنے آئیں گے. صحیح روایات میں آتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج واقعی ایک قوم ہے, آج بھی موجود ہے دنیا میں, اور یہ ذوالقرنین کا ایک احسان ہے انسانیت پہ کہ اس نے ان کے اور آج اس دنیا کے بیچ میں ایک دیوار لگائی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں نے اس دیواروں کی بات بھی کی یہ کون سی ہے, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اسی زمین پہ کوئی ایسا خطہ موجود ہے جہاں یہ موجود ہیں, اور یہ ہر روز صبح جا کے اس دیوار کو توڑنا چاہتے ہیں, اور شام تک بالکل یہ اس کو پتلا کر چکے ہوتے ہیں, قریب ہوتا ہے کہ وہ توڑ لیں, لیکن سورج جب ڈھلنے لگتا ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا ہم کل کریں گے, انشاءاللہ نہیں کہتے. اور جب واپس آتے ہیں اگلے دن تو وہ دیوار پھر پہلے کی طرح موٹی ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب قرب قیامت کی علامتیں ظاہر ہوں گی, ان کو نکلنا ہے, تو اس دن ان کو توفیق مل جائے گی, یہ کہیں گے انشاءاللہ اب کل کریں گے. تو اگلے دن آئیں گے تو دیوار اسی کیفیت میں ہوگی جس میں چھوڑی تھی, اور پھر اس کو توڑیں گے, یہ دنیا میں آئیں گے, اتنے زیادہ ہوں گے کہ سمندروں کے سمندر پی جائیں گے, جہاں سے گزریں گے اس کو چاٹیں گے اور بہت بڑا فتنہ پھیلائیں گے. ان کے ہاتھوں میں تیر ہوں گے, پہلے دنیا والوں کو ماریں گے, پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے کہ آؤ اب ہم آسمانی مخلوقات کو مارتے ہیں. ان کی آزمائش ایسی ہوگی کہ جب وہ تیر واپس گریں گے تو ان کو خون لگا ہوگا, تو یہ خوش ہوں گے, دیکھا ہم نے آسمان والوں کو بھی مٹا دیا. اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی یعنی بیماری بھیجے گا جس سے یہ مریں گے, اور پھر آسمان سے کوئی ایسی مخلوق آئے گی پرندوں کی جو زمین کو صاف کرے گی. تو قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے آنے والے ہیں. آج بھی جو دنیا میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں یہ اسی دیوار کے سوراخ کی وجہ سے. تو بات چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو سورۃ کہف کی آخری یا شروع کی 10 آیتوں کے پڑھنے کا حکم دیا, تو اس میں فتنہ دجال سے بچاؤ کی بات بھی تھی. اس کی بہت ساری تفسیرات کی جاتی ہیں کہ یہ مال کا فتنہ ہے, کہیں کہتے ہیں یہ ویپنز کا فتنہ ہے, کہیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے, لیکن جو بات جہاں جتنی ہمیں بتا دی, میرا خیال ہے کہ اسی کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب سورت کا آخری رکوع ہے اور بہت ہی خوبصورت پیغام ہے, پوری سورت کا اصل میں خلاصہ ہے اس کے اندر. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گٹ مٹ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے, اور سور پھونک دیا جائے گا, بس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے. اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے. کون سے کافر؟ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امرے حق سن کر بھی نہیں سنتے تھے. کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو, ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا, اس لیے ان کے اعمال غارت ہو گئے. بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے. حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے, کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا. इसके बरक्स इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने काम भी अच्छे किए, यकीनन इनके लिए फिरदौस के बागात की मेहमानी है जहाँ वो हमेशा रहा करेंगे, जिस जगह को बदलने का कभी भी इनका इरादा ही न होगा। कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो वो भी मेरे रब की बातों के खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, गो वो इसी जैसा और भी इसकी मदद में ले आए। कुल इन्नमा बशरुम मिस्लुकुम, आप कह दीजिए मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूँ, हाँ मेरी जाने वही की जाती है कि सबका माबूद सिर्फ एक ही माबूद है, तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरजू हो इसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक न करे। ये थी आयत नंबर 99 से 110, 99 से 110। इन आयात का उनवान है इनको मौज मनाने दो, अल्लाह की पकड़ आने वाली है। एक दूसरा टॉपिक भी लिखेंगे इन आयात का, असल खसारे में कौन। इस हिस्से से आप आयत नंबर 103 और 104 को आप हाईलाइट कर लें। कुल हल नुनब्बियुकुम बिल अखसरीन आमाला अल्लज़ीन दल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ। ये उन लोगों का तذکرہ है जो सारी जिंदगी कोई काम करते रहे ये सोच के कि ये काम बहुत अच्छा है, लेकिन उनको आखिरत में पता चलेगा कि हमें हमारे इस काम का तो कोई बदला ना मिला। दुनिया में इंसान दो तरह के काम करता है, एक दीन के काम दीन समझ के और एक दुनिया के काम। दुनिया के काम को करना दुनिया के लिए और सिर्फ उसी को अपनी जिंदगी का मशगला बना लेना और ये सोचना कि असल कामयाबी यहाँ की कामयाबी है। कल ऐसे लोग जब आखिरत के दिन अपने आप को बिल्कुल बेसरो सामान पाएंगे तो उनकी हसरत का कोई ठिकाना ना होगा। आज दुनिया में आपने कुछ लोगों को देखा होगा सरासर दुनिया का काम करते हैं लेकिन उसके साथ दीन का एक लेबल लगा देते हैं। बहुत साल पहले मैंने एक चीज कहीं पढ़ी थी तो वही मेरे जहन में आती है नायतों पे। कोई अपने वक्त की फनकारा थी, यानी आर्टिस्ट कह ले सिंगर थी, तो किसी मौके पे उसको हज या उमरे पे जाने की तौफीक हुई होगी तो अखबार में उसका एक छोटा सा बयान छपा था कि मैं खाना काबा में जाके पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की की दुआ करूंगी। ये है वो जुमला अल्लज़ीन अदल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुना। शैतान ने बहुत सारे लोगों को इस धोखे में डाला हुआ है, काम करवाता है सरासर अपनी पसंद के और नाम लगवा देता है अल्लाह का। ऐसी खबरें मिलती रहती हैं, लोग चैरिटी प्रोग्राम रखते हैं, लोग किसी मुल्क में कोई जलजला आया तो उसकी मदद करने के लिए डोनेट करते हैं और वहाँ हर वो काम हो रहा होता है जो अल्लाह की नाफरमानी के। बाज़ दफ़ा लोग फंड रेजिंग्स करते हैं और वहाँ अपने मनपसंद काम करते हैं। देखिए हमें किसी पे कोई कुछ कहने का हक नहीं है, अपनी जिंदगियों का रुख देख लें। ये तो बड़ी बदबख्ती है ना कि इंसान काम दुनिया का कर रहा हो और उसको दीन का समझे। इसी तरह बाज़ लोग दीन के नाम पे भी बहुत सारे अच्छे काम करते हैं लेकिन अल्लाह की निगाहों में वो अच्छे नहीं होते, उसमें बिदात आ जाती हैं, उसमें मनमाने तरीके से दीन के काम करने आते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके पे एक शख्स को देखा, पादरी था, बड़े तपाक से इबादत कर रहा था तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी सल्लम से आके पूछा कि अल्लाह के नबी इन लोगों का क्या बनेगा। और आज भी आप देखिए किसी बातिल परस्त को आप उनके दीन के काम बड़े शौक और जौक से करते देखे जो आपको बताए कि उसमें सरासर शिर्क है तो आपके भी दिल में तड़प आनी चाहिए और तकलीफ भी होनी चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि ये वही लोग हैं कि आमिलतुन्नासिबात, ये वो मेहनत करने वाले हैं जिनको इसका अजर नहीं मिलेगा। हम सब के लिए इस दुनिया में एक ही मौका है अमल करने का। कोई दुनिया का काम कर रहा है और अपने ख्याल में वो अच्छा काम कर रहा है। मैं लोगों से जो जुमले सुनती हूँ मैं कहती हूँ मैं तो जी सोशल वर्क इतना करती हूँ, मुझे क्या जरूरत है अब नमाज पढ़ने की। अल्लाह कहता है बंदों को खुश रखो, ये नमाजों से क्या होगा, ये तो सिर्फ टकरे हैं, ये तो सिर्फ सर को ऊपर नीचे करने की बात है, हम तो चलते फिरते नमाज पढ़ते हैं। कोई कहता है क्या हुआ अगर मेरा बिजनेस हराम है, देखें हम कितनी मस्जिदों को चला रहे हैं। हर एक ने अपनी पसंद के काम जमा किए हुए हैं और लेबल उस पर दीन का लगा दे। कभी दुनिया में ऐसा हुआ आप ग्रोसरी स्टोर से कोई चीज़ खरीद के लाएं जो चीज़ बाहर लिखी हुई थी अंदर से खोलें तो कुछ और हो? कोई कंपनी ऐसा अगर कर देगी तो मेरा ले वो खुद ही इसको कंपनसेट करने के लिए आपको अच्छा खासा उसका रिफंड देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जब इनकी गलती होती है तो ये आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट देते हैं। वो लोग जो दुनिया के कामों के ऊपर दीन का लेबल लगा के बैठे उनका यही हाल है, उनको इसकी कंपनसेशन में आखिरत के दिन अपनी जिंदगी भर की नेकियां देनी पड़ेंगी। बड़े प्यार से दुआ मांगे कि अल्लाह अव्वल तो नेकियां है ही थोड़ी हैं, है ही कुछ नहीं, और जो है उसको भी तो सीधी रखना। वो शख्स ज्यादा खसारे में जो नेकियां करे लेकिन कल उसकी वो कबूल ना हो। और फिर आखिर में अब देखिए कि रियाकारी की बात भी आ गई। अपने कामों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए करना, यही वो चीज है जिसकी वजह से इंसान की नेकियां अल्लाह की निगाहों में कीमत भी रखती हैं और वजन भी रखती हैं। सूरत काहफ का मैसेज यही था कि सारे सहारों को छोड़ के एक रब पे आ जाओ। इस रास्ते में कुर्बानी देने के लिए घर के आराम छोड़ के गार में पनाह लेनी पड़े तो भी ले लो। इल्म के सफर में तुम्हें अपने वक्ती आरामदेह माहौल को छोड़कर अगर मीलों सफर भी करना पड़े, यानी अपने इल्मी सफर के लिए तुम्हें कुछ अरसे के लिए अगर अपनी जिंदगी की रौनकें और हंगामे कम भी करने पड़े तो इसको कर लो। और फिर अगली चीज हमने इसमें से यही सीखी कि अगर अल्लाह ने आपको कोई नेमत दी है तो इसको इंसानियत की फलाह बहबूद में लगाएं, बजाय इसके कि आपके साथ आपकी कब्र में चली जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारी गलतियों को माफ करे और हमें अमल की तौफीक दे। जब हम इस सोच के साथ सूरह कहफ को हर जुमे पढ़ेंगे ना, तो इंशाल्लाह वाकई भी हमें फितने दज्जाल से काफी होगी। और बगैर सोचे समझे जब पढ़ते हैं तो फिर वही बात है कि आदतन तो इंसान कोई भी काम कर ले, इंशाल्लाह जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे दोबारा तो फिर इसमें से बहुत सारी चीजें और भी अल्लाह ने चाहा तो निकालेंगे।